आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् आसक्तिर्ना विश्वसंगा पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तित्वम् इष्टानिष्टोपपातिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याविचारिणे विवृत्तदेशसेवित्वम् रतिराजनसंसिदे अध्यातम् ज्ञानम् नित्यात्मम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानम् यत्तु अन्यथा विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रमाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्म संयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा दुख दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से बेलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है बैठक अज्ञान बोलो भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता के बोलो मोर मुकुट वंशी वाले की बोलो भगवद गीता यथारू पूरे संसार को देने वाले जगत गुरु श्री भगवान की तो तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से ग्यारहवें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मई चानन्य योगेना भक्ति रभ्या विचारणी ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है अतः यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं में विकसित हो जाती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद 18वां अध्याय और 12वें श्लोक में कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासति सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यदि यहां तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रमाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहां पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों और माताओं, भक्ति का होना बड़ा आवश्यक है। और भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? गुरु धारण करने से। जैसे आप प्रभुपाद लिख रहे हैं और भगवान ने कहा है, आचार्य उपासनम शौचम, प्रमाणिक गुरु के पास जाओ। गुरु का होना भी बहुत आवश्यक है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को प्रश्न किया गया कि प्रभुपाद आप प्रमाणिक गुरु कैसे पाए, प्रमाणिक गुरु कैसे मिलेगा आपको? प्रभुपाद कहते हैं, पहले तुम प्रमाणिक शिष्य बनो तो गुरु से तुम्हें भगवान मिला देंगे। कई बार आम लोगों को गुरु ठीक नहीं मिलता, फिर बाद में पता लगता है। कई ऐसे कलियुग में पुराण आप देखते हैं, टीवी में आते हैं, कई बार तो बाद में लोग कहते हैं, अब जैसे एक आदमी हमारे पास आया था कल के परसों से आया था, उसके से एक आदमी अगर कहते महाराज मेरा मन शांत नहीं है, मेरा मन बहुत भटक रहा है। मैंने कहा गुरु कौन है तुम्हारे? कहा नाम लिया उसने, कहते उससे दीक्षा ली और पत्नी की भी जबरदस्ती दीक्षा करवाई मैंने, लेकिन मन मेरा बड़ा ही अशांत। कहते जब मैंने टीवी में देखा कि ये ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा है फ्रॉड, तो मन मेरा हट गया। एक दूसरा भक्त उसको ले आया था, कहते हैं कहते तुम हमारे गुरु महाराज के पास चलो, तो इसके कहने पे मैं आया। प्रभुपाद कृपा से उसको बोला महामंत्र का जप करो, तो प्रभुपाद कृपा से उसको तुरंत अनुभव होना शुरू हो गया। कहते मुझे बहुत अच्छा लगा, बाबा साहब के बाद मैंने गुरु का त्याग किया और मैं भक्ति करूंगा। तो कलयुग में सब जगह बिजनेस बन गया पैसा, भक्ति क्या है? भक्ति है निष्काम सेवा, जैसे कई बार आपको बताया। वो निष्काम सेवा श्रील प्रभुपाद ने सारे संसार को दी है। और आज हम लोग उस निष्काम सेवा को छोड़ करके सकाम उसमें लग गए हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बदले में पैसे चाहिए, बदले में ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। वो सब चीजें मिल जाएंगी सुख सुविधा, लेकिन ये सब क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। ये सुख सुविधा है, कोई सदा रहने वाली नहीं है। शरीर के अंत के साथ इन सबका अंत हो जाएगा। पर अगर जीवन काल में हमने भक्ति प्राप्त की होगी तो भक्ति का अंत नहीं होने वाला। अगर पूर्ण भक्त बन गए इसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे, अगर पूर्ण नहीं बने थोड़ी भक्ति की अगला जन्म वहीं से शुरू होगा जो हमने इस जन्म में यहां छोड़ेंगे। मान लो उदाहरण देते हैं कि एक आदमी 100 सीढ़ी चढ़नी है, 100वीं सीढ़ी के बाद उसको वहां पर भगवान से मिलना है, भगवान ऊपर बैठे हुए हैं। इस जन्म में वो कोशिश करके 10 सीढ़ियां चढ़ चुका, 90 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया और मृत्यु हो गई। अगला जन्म उसका वहीं से शुरू होगा जो उसने 10 सीढ़ियों से शुरू होगा। फिर उस जन्म में फिर हिम्मत करके अगले जन्म में 90 चढ़ जाता है तो भगवान मिल जाते हैं, अगर 20-25 तक पहुंचता तो फिर एक जन्म और लेगा। तो भक्ति ही जीवन है। तो जब तक प्रमाणी गुरु नहीं मिलता तो जीव भटक जाता है। गुरु के अनुरूप ही शिष्य के विचार बनते हैं। कलयुग में बहुत दोष है तो हम निष्काम भक्ति करें, और भक्ति का अर्थ ही है सेवा, और सेवा का अर्थ है भक्ति। यही वर्णन से आपको बताया है भगवान श्री कृष्ण। भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहिए। अभी जैसे भक्त तो भगवान से कुछ मांगते नहीं, भगवान देना चाहते हो लेते नहीं। एक कथा आपको पहले भी सुनाई है, ये फिर सुनाते हैं, कुछ नए लोग हैं, दोहराने से हमें ये बातें याद रहती है। रांका और बांका की कथा आती है, महाराष्ट्रियन थे, महाराष्ट्र भी दक्षिण भारत में आता है। तो पति पत्नी बड़े भक्त भगवान के, तो नारी जी ने देखा भाई ये बेचारे भक्त इतने हैं, शुद्ध भक्त है, लेकिन गरीब इतने हैं, इनके पास आई कुछ नहीं। जाके भगवान ने भगवान के पास किए नारी जी, कहा प्रभु आप अपने भक्तों को भी देते ही नहीं। भगवान कहते नारद मैं तो देखता हूं वो लेते ही नहीं। तो नहीं प्रभु ऐसे आप ध्रोह क्यों नहीं लेंगे। अच्छा चलो तुम्हारी इच्छा है देने की मैं देता हूं। नारद जी और भगवान श्री कृष्ण आ गए, उधर से रांका बांका आ रहे थे। रांका आगे आगे भगवान के स्मरण करते हुए, बांका पत्नी पीछे पीछे, पत्नी ने घूंघट निकाला हुआ था। ये मर्यादा है, स्त्री अपना मुख नहीं किसी दूसरे पुरुष को दिखाती, क्योंकि स्त्री का सारा शरीर पुरुष के लिए आकर्षित है। मुंह उसका चेहरा ज्यादा आकर्षित है, पर प्रभुपाद बता रहे हैं स्त्री के सारे अंग पुरुष के लिए आकर्षित है। स्त्री के अंग स्त्री का मुंह पुरुष को नहीं देखना चाहिए, और स्त्री के प्रति मां का भाव रखना चाहिए। ये प्रभुपाद की शिक्षा है, क्योंकि शरीर का जन्म मां से ही होता है। तो बांका ने घूंघट निकाला होगा, रांका जी आगे के जा रहे हैं, उनका अंतर है, सांस नहीं चल रही। आज इतनी बेशर्मी है, ऐसा लीडरों का प्रचार है, बांह में बांह डाल के चलेंगे, बेशर्मी का प्रदर्शन करेंगे, बड़े बड़े शहरों में ये गंद फैल रहा है। बेशर्मी का प्रदर्शन करेंगे और मरेंगे, मर रहे हैं, बड़े आत्महत्याएं हो रही हैं, कत्ल हो रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। क्योंकि भक्ति कहीं है लोग और बेचारे नर्क में जा रहे हैं, तो अंकल जी आगे आगे हैं, पत्नी पीछे पीछे है। तो भगवान ने आगे सोने की मोहरों की थैली रख दी। नारद जी देखो मैंने थैली रख दी। दोनों भगवान श्री कृष्ण और नारद जी वृक्ष के पीछे हो गए। सोने की मोहरें हैं, रांका जी ने जब देखी, थैली देखी, सोचने लगे अगर इसको ले जाएंगे इनका चिंतन करना पड़ेगा, खाली चिंतन नहीं होगा, कृष्ण का चिंतन नहीं होगा। तो पत्नी पीछे आ रही तो मट्टी डालने लगे उसके ऊपर, मोर पर दिखेगा थैली, वो कहीं लेने के लिए क्या गई तो फिर मना नहीं कर सकते हैं। मैं मना नहीं कर पाऊंगा। मट्टी जब डाल रहे हैं तो पत्नी ने देख लिया, पत्नी ने कहा पतिदेव आप क्या कर रहे हैं, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हैं। उसकी नजरों में सोने की वो थैली मट्टी से ज्यादा निकली, मट्टी से तो निकलता है सोना हर चीज। अब ये आप देख रहे हैं मार्बल, ये भी तो मट्टी से निकला है, जमीन से निकला है, हर चीज धरती माता की देन है। तो भगवान कृष्ण और नारद जी देख रहे, उन्होंने देखा, तुम कहते देते नहीं मेरे भक्त को, लेते नहीं। जिन्हें भक्ति मिल गई है वो कुछ नहीं चाहते। इसलिए बड़ा सुंदर मीराबाई ने कहा है, जो बड़ी भक्त थी, वैष्णवी माता थी, मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैं राम रतन वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मैं कृपा कर अपनायो, कृपा कर अपनायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न कूटे चोर न ले वे, खर्चे न चोर न ले, दिन दिन भारत सवायो, दिन दिन भारत पायो जी मैंने राम रतन धन पत की नाम खबिया सतगुरु, सत की नाम खबिया भाव सागर कर आयो, भाव सागर कर आयो जी मैंने राम रतन धन पा। तो मीरा अशुद्ध भक्त थी भगवान की, कृष्ण की। और एक बार कलकत्ता में एक भक्त ने हमें बताया, हमारे गुरु भाई ने, एक मांगने वाला मीरा जी का भजन गा रहा था, प्रभुपाद ने कहा इसको एक रुपया दो जाएगा मीरा जी। और मीरा जी ने देखो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं कृष्ण है, राधा भाव है, लेकिन कई मूर्ख लोग उनको संत कहते हैं, भगवान भक्त के रूप में आए। और मीरा ने स्वीकार किया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है। क्या कहा मीरा ने, मीरा कहती है કે કિત છોડી વે મોહન મુરલી, કિત છોડી સબ ગોપી, મોહન મુરલી કાં છોડી, તને ગોપી કાં છોડી, વળી ગોપીએ થી મૂળ મુડાય ડોરી કદી બાંધી, માથે મોહન ટોપી, શરવણ આ ચેતન મહાપ્રભુ તો સન્યાસી બની ગયું તેને માટે, મુરલી કહા ગોપીએ કહા, ફિર ભજન કે આકર મેં કહા હૈ ગૌર કૃષ્ણ કી દાસી મીરા, ગૌર જૈસે ગૌર રાધા કૃષ્ણ, ગૌર કૃષ્ણ કી દાસી મીરા રસના કૃષ્ણ રસના, उन्होंने कहा कि भजन बड़ा सुंदर है, सब जग कोई है माखन चोरा, दुनिया दुनिया का माखन चुराने वाला, नाम धरे हो बेरा की, क्या कहा, अब तो हरि नाम लौला की, अब तो हरि, अब तो हरि नाम लौ लागी, अब तो हरि, सब जग को यह माखन चोरा, सब नाम धरयो बैरागी, नाम धरयो बैरागी, अब तो हरि नाम लौ लागी, अब तो, दुनिया का मक्खन चुराने वाला दिराजी भाई से यार, और हरि नाम लौ लागी नाम जपता है, तो मीना क्योंकि शुद्ध भक्त है वो चैतन्य महाप्रभु को पहचान देगी, चैतन्य महाप्रभु को बोला ये कृष्ण है तो ये माखन चोर है, ये कृष्ण और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, अंतर है भाव का, महाप्रभु कृष्ण राधा भाव में है, वैसे इतना अंतर है, आप जब चैतन्य लीला देखेंगे पीछे उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, अद्वैताचार्य को छड़भुज रूप दिखाया, नित्यानंद प्रभु को मैं ही राम मैं ही कृष्ण मैं ही चैतन्य, तो मीरा जी का बड़ा दिव्य भाव है, भाई ये जो नाम है ना, नाम का जो भजन सुनाया पहले आपको, मीरा जी कहती है ये जो नाम है गुरु कृपा से मिलता है, अगर गुरु की कृपा नहीं है तो नाम जपते रहो, कैसे बड़ी सुंदर कथा की है भक्त मार्ग में, एक व्यक्ति ने नदी पार करनी थी तो उसने महात्मा जी को बोला कि महाराज नदी पार करनी है, उन्हें कागज पर राम नाम लिखा, बोले लिख के जाओ, तुम जा रहा था तब किनारे पे पहुंचने वाला था जब, तो देखो क्या कौन सा मंत्र लिखा है ये, महात्मा जी ने देखा राम का, ये तो मैं भी जानता था, जब ये श्रद्धा खत्म हुई तो डूबना शुरू हो गया, उधर से बोला भाई ये जो महात्मा जी वाला नाम, तो जब गुरु से नाम मिलता है वही फलीभूत होता है, और गुरु भी परंपरा में होना चाहिए, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजश्रो विदु सा कालीन महाकल गो नष्ट परंत पाओ, भगवान कहते हैं अर्जुन ये जो तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूं ये गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा था, लेकिन बड़ा समय होने के कारण ये परंपरा नष्ट हो गई, अभी तेरे से मैं परंपरा शुरू कर रहा हूं, क्यों, तो मेरे भक्त हो और सखा हो मेरे, भक्तों से सखा चेती रहस्य मिल मुक्ति मऊ, तो मेरे भक्त और सखा हो, तो आप देखो कि जब सदगुरु से प्रभुपाद जी जैसे सदगुरु से जब नाम मिलता है वो फलीभूत होता है, और ये भी कहा कि संप्रदाय बहेना ये मंत्र है निष्फल मतलब, अगर गुरु संप्रदाय में नहीं आए किसी ने नाम ले रखा है उसका फल नहीं होता, तो गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। गुरु प्रमाणिक होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए, प्रभुपाद समझा रहे हैं। और भक्ति शुरू होगी गुरु से, गुरु से भक्ति शुरू होगी। जब गुरु धारण करेंगे, अगर किसी को ठीक गुरु नहीं मिलता, लंपड़ मिलता है, प्रभुपाद ने ये भी लिखा है बलि महाराज के प्रसंग में कि उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। शुक्राचार्य कहते हैं कि उन्हें जब मैंने इसको वचन दे दिया है बामन को कि जो मांगेंगे वो दूंगा, जैसे वचन भंग कर दे नहीं देना कुछ भी, मगर सब कुछ ले लेगा। ये भगवान आए हैं स्वयं, कहते गुरु जी ये क्या शिक्षा दे रहे हैं मेरे को, वचन भंग कर दो। भगवान अगर सबसे मांगते हैं तो भगवान मेरे पास आए मांगने के लिए, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, जो ये कहेंगे मैं दूंगा। गुरु का त्याग कर दिया। फिर वहां लिख रहे हैं अगर गुरु ठीक शिक्षा नहीं शिष्य को दे रहा, गुरु जो है उल्टी सीधी बातें करता है, तो शिष्य को त्याग करने का अधिकार है और दूसरे गुरु को धारण उसको करना चाहिए। प्रमाण है भागवत छात्र प्रभुपाद ने। पर अगर गुरु ठीक है, अगर वो शिष्य को सुधार रहा है और शिष्य मतलब सुधरना नहीं चाहता है, तो गुरु को त्याग देने से शिष्य को घोर नर्क में जाना पड़ेगा। तो सुधरना नहीं चाहता था, गुरु बना लेते ना एक लोग फैशन के तौर पर। प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु बनाते हैं फैशन के लिए, गुरु बनाया फैशन ऐसे, गुरु आज्ञा पालन करके भक्ति करनी है, निष्काम सेवा करनी है। और अगर गुरु धारण किया है देखने में ठीक भी लग रहा है पर भक्ति नहीं जागृत हो रही तो कमी है कहीं ना कहीं। गुरु के पास जाना आवश्यक है, गुरु धारण करना आवश्यक है, फिर निष्काम भक्ति करनी भगवान की। कोई कामना नहीं, एक ही कामना, ये कृष्ण मुझे आपका प्रेम मिले, मैं आपका सच्चा भक्त बनूं, सच्चा सेवक बनूं। केवल ऐसे दृष्टांत आते हैं भगवान मांगने के लिए, कहते हैं जैसे जटायु थे, जटायु को रावण ने पर काट दिया, राम जी आ गए और उन्होंने बड़ा उसमें जिंदा कर देते हैं। अभी बोलो अभी नहीं प्रभु, ऐसे रामायण में वर्णन आता है कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम मुख आवत नाही, करोड़ों जन्मों तक ऋषि मुनि प्रयास करते हैं, अंत में भगवान का नाम नहीं आता। आप तो मेरे सामने है, आपकी गोद में मैं हूं, आपका नाम ले रहा हूं, ऐसी मृत्यु किसकी होगी प्रभु, मैं नहीं जीना चाहता। तो भगवान रोए जटायु के लिए, वर्णन आता है जटायु जी ने दशरथ जी की बड़ी मदद की थी। दशरथ जी नीचे गिर गए थे, जटायु जी अपनी पीठ पर बिठाकर सही युद्ध के लिए ले गए थे उनको। तो भगवान दशरथ जी जब नीचे आए, उन्होंने कहा कि ये पक्षीराज जटायु बताओ वर्तमान है, तुमने मेरे पर बड़ा उपकार किया, मैं क्या करूं तुम्हारा। बोला कि आपका जो बड़ा बेटा है वो मेरा बेटा है, मित्र बना लिया दशरथ जी ने अपना। कहते हुए ये आपकी बात तो पूरी नहीं होगी, मेरे को बेटा ही नहीं है। कहते कोई बात नहीं, जब हूं बेटा। फिर राम जी जब प्रकट हुए, चार भाई हैं, तब जटायु अपने आगे उन्होंने बोला के बेटा ले लीजिए, महाराज वचन दिए आप। राम जी के दर्शन किए, बाहर रूप में भगवान है, कहने लगे जटायु जी कि मैं पक्षी कहां रखूंगा, इनको क्या करूंगा। कहते वहां आप ही इनको रखो, मैं कभी कभी इनके आके दर्शन किया करूंगा। तो भगवान ने जैसे पुत्र पिता का दाह संस्कार करता है, ऐसे जटायु पर किया। लक्ष्मण को बोला था चिता बनाओ, पर भगवान ने अग्नि दी थी जटायु जी के मतलब चिता को। और भगवान ने मतलब रोए भगवान विचारी तो मैंने उनकी आंखों में आंसू आए। तो आप देखो कि ये मैंने एक प्रसंग छोटा सा इसलिए सुनाया क्योंकि आई को मांगने के लिए कह रहे कुछ भी मांगता हूं दे देते और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है निष्काम भक्ति। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जटायु के बारे में कि जटायु देखो भगवान ने उनका संस्कार किया क्योंकि वो भक्त थे। भगवान पूरा सबका संस्कार करते हैं तो भक्ति बड़ी दूर की चीज है। हम सबको भक्ति का दान दिया है प्रभुपाद जी ने। हम सब भक्ति अपने जीवन में लाए और अपने जीवन को सफल बनाए। बोलो भक्ति माता की। बोलो पूरे संसार को भक्ति देने वाले जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। बोलो गौर निताय पंच तत्व की। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। कुछ सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं आप। किसी माता को किसी भक्त को अगर कोई प्रश्न है तो जोर से बोल। आगे बढ़ दो। ऐसा है कि ये हरे कृष्ण मंत्र जो है इसको स्वयं भगवान ने जपने के लिए कहा है। पहले तो बात ये कहूं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उन्होंने इस मंत्र को प्रदान किया और कृष्ण भी पहले अभी आप पहले वो बड़ी बात नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं आप हरे राम करो तो पहले कृष्ण कभी आ जाएंगे कभी राम आ जाएंगे कोई फर्क नहीं। पर कृष्ण को पहले भी महाप्रभु ने किया क्योंकि ये वेद मंत्र है। इसका वर्णन कलि संकलन उपनिषद में है तो वेद मंत्र को बदलने का अधिकार भगवान को ही है। उन्होंने कलियुग के लोगों के लिए पहले कृष्ण से शुरू किया क्योंकि कृष्ण सबके कारण है। सर्व कारण कारणम। कल भी आपको बताया था कि ईश्वरा परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये मंत्र भगवान ने प्रदान किया है। बड़ा है तो ये वेद का मंत्र है तो बड़ा है तो उसको जपना हमने अभ्यास करना है। बोला शुरू में आपको मुश्किल है जपने में तो आप अभ्यास करो फिर आप धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाएगा जपते जपते। और बड़ी बात नहीं है कृष्ण पहले राम पहले अगर आप हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोलोगे कोई अंतर नहीं। प्रभुपाद ने ऐसा बताया हरे कृष्ण से शुरू करो क्योंकि कृष्ण सबके कारण है। कृष्ण 16 कला है संपूर्ण है। राम जी 14 कला है और यहां जो राम है केवल लोग कहते हैं ये कौन से राम है। इन राम में और बलराम में कोई अंतर नहीं। दोनों विष्णु तत्व हैं दोनों भगवान के ही स्वरूप हैं। कोई इनको ये राम समझता तो भी ठीक है कोई बलराम समझता वो भी ठीक है। तो ऐसे लोगों को समझाना है आगे उनका भाग्य है समझे या नहीं समझे पर प्रयास करना है। मेरे जैसा प्रश्न हो तो और कोई प्रश्न किसी को श्री पांच को नींद आ रही है। हाँ ജോർച്ച് ബോൾ ഖടാവക്ക് ബോൾ पूरे जन्म के कर्म है उसके, वो अच्छे कर्म भी हो गए हैं, पाप कर्म भी है, तो प्रमाणी गुरु के मेरे जन कहते नहीं। अब यह जो वर्णन आ रहा है कि ध्रुव जी ने यह प्रश्न किया, क्योंकि नारद जी ने जब ध्रुव जी जा रहे थे भगवत प्राप्ति करने के लिए, नारद जी ने कहा कि बेटा कि करोड़ों जन्मों का कई कल्पों तक प्रयास करने पर भी ऋषि मुनि भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो उन्होंने प्रश्न किया भगवान को तो प्रभु फिर आप मुझे 6 महीने में कैसे प्राप्त हो गए, ये कैसे हो गए, क्योंकि ऋषि मुनि बड़ा प्रयास करने पर ही नारद जी ने मुझे कहा तो नारद जी का कोई वचन मिथ्या नहीं हो सका, गलत नहीं हो सकता, नारद जी को कहते वही ठीक है। तब भगवान कहते कि ध्रुव एक तुम्हें जन्म मेरी प्राप्त हुई है, तेरे कई करोड़ों जन्मों का फल है, उसको दृष्टि दी सब पूरे जन्म देखे हो सकता है, कि जन्मों से तो भक्ति करता है, इस जन्म से तो ये नहीं है कि इसी जन्म से नहीं, समझाई, तो कोई जन्म का पुण्य है जिसके कारण शिष्य तो प्रमाणिक नहीं है, शिष्य बदमाश है, बदमाशी करता है, पाप कर्म है, बुद्धि मलिन है, उल्टे सीधे काम करता है, इंद्रियों की तरफ में उसका मन लगा हुआ है, फिर भी गुरु प्रमाणिक मिल जाता है कारण उसका कोई कर्म है, पूरे जन्म कोई पुण्य है, अच्छा पुण्य होने से समझे, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट तो कुछ नहीं होता, कई उसके उदाहरण है, कई उदाहरण आए हैं जिनको शिष्य ऐसे बदमाश होते हैं लेकिन गुरु अच्छे मिल जाते हैं। और कोई प्रश्न किसी को, मधुप्रिया तेरे को क्या प्रश्न है, कुछ भी नहीं, नरहरि जी आपको क्यों प्रश्न, हाँ क्या प्रश्न है आपका, थोड़ा जोर से बोलो, देखो अनन्य भक्ति शुद्ध कृष्ण प्रेम यही तो तथ्य कर रहे हैं, मिलेगा जो निष्काम सेवा करेंगे, कोई काम नहीं, केवल भगवान की सेवा, सेवा करते करते जब शुद्धि हो जाएगी तो शुद्ध कृष्ण प्रेम मिलेगा। अभी कोई सेवा कर रहे हैं और शुद्धि नहीं हुई, लगे रह रहे, जब शुद्धि हो जाएगी मन में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा कि मुझे कृष्ण का सच्चा प्रेम कैसे मिले, कृष्ण का सच्चा सेवक कैसे बनू, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, कोई इच्छा नहीं। फिर वो धीरे 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 एकदम टिपिर जाने नहीं होगा, धीरे धीरे हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम मिले, समझाई नहीं, जैसे कहा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो रहे, मानी सिंचे सौ घड़ा ऋतु आए फल, अरे आपने पौधा लगाया भी तो कल फल लगे, उसकी सिंचन करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, उनका ऋतु आएगी, समय आएगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर फल, तो आप गलती चाहते हैं, जल्दी चाहते हो, हाँ हाँ जी, तो कुछ वो प्रेम भक्ति करो, ये भगवान के ऊपर है, भगवान के ऊपर है ना, लेट शुरू किया आपने भी,
मोह माया फसले पहले बिस्कुटें बनाते रहे और कोई पशु किसी माता को किसी भक्त को बच्चे को कोई भी हमसे बुरे कर्म हो जाते तो उनका प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित भक्ति नाम सिमरन आगे के लिए कर्म नहीं करने ठीक है। बोलो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।